आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फऔजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम है आपकी राय, और हसबे साबिक कुछ रैंडम पिक्चर्स हमने अपने सिलसिले के लिए इंतखाब किया हुआ है जिनको इंशाल्लाह पेश करेंगे, आप भी देखेंगे। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं इमरान मदनी भाई हैं, अदनान चिश्ती भाई हैं, खालिद मदनी भाई हैं और अब्दुल वाजिद मदनी भाई हैं। इंशाअल्लाह इनकी राय होगी, इनके कमेंट्स होंगे और उमूमी तौर पर तमाम तर मोहब्बतों और अपनाइयत के बावजूद हमारे पैनल की जो राय होती है वो आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है, जुदा गाना होती है। अलबत्ता इख्तलाफ राय का हक़ देते हैं और दूसरे की राय को भी अप्रिशिएट कर लेते हैं, तो आज भी ऐसा ही होना है। कुछ पिक्चर शामिल करेंगे और जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ आज भी कहूँगा कि आपका भी इम्तिहान है, आपके फहम का भी इम्तिहान है कि जो हम पिक्चर पेश कर रहे हैं आप भी ज़रा सोचिए कि उस एक पिक्चर में से कौन कौन से सबक हमें मिल रहे हैं, किन किन चीज़ों से हम इबरत हासिल कर सकते हैं। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि बेशक बरूज़ क़यामत इसकी दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि मैं तस्वीर की तरफ बढ़ूं, पिक्चर शो करें आपको और मुबल्लिगीन को, एक गुजारिश पेश करना चाहता हूं। हमारे सिलसिले में क्योंकि एक तस्वीर दिखाई जाती है, एक पिक्चर दिखाई जाती है जो एक मंज़र पर मुश्तमिल होती है और हम राय देते हैं। हर मंज़र का एक पस मंज़र होता है। हम अपनी रियल लाइफ में जब मुख्तलिफ़ फ़ैसले कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात हमारे पेश नज़र होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम राय देने में, फ़ैसला करने में बहुत जल्दी कर जाते हैं। और आपको भी इसका तजर्बा होगा कि बाज़ औक़ात वो राय और वो फ़ैसला गलत साबित हो जाता है, मंज़र की वजह से नहीं बल्कि पस मंज़र की वजह से। इसकी एक मिसाल दी जाती है, एक हिकायत बयान की जाती है, मुमकिन है ये वक़ूई वाकया ना हो, यानी ये वाकया हकीकतन में मुमकिन है कि ना हुआ हो, किसी ने तमसीलन इसको बयान किया हो। वो यूँ है कि एक शख्स अपने बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसका बच्चा बहुत शरारतें कर रहा था। बाज़ बच्चे होते हैं ना, ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं और वो किसी से डरते वरते भी नहीं है। ट्रेन व्रेन में ऐसे बच्चे आ जाए ना तो वो पूरा केबिन ही उनका नानी जी का घर बना हुआ होता है। तो ऐसा ही था उस बच्चे का भी, गोया कि यहाँ से छलांग मार, इसको तंग कर, उसके साथ शोर शराबा कर, तो ऐसा था। अब लोग एक टाइम तक तो बर्दाश्त किया लेकिन फिर बाप को देखना शुरू किया, बच्चे को देखना शुरू किया और फिर किसी ने बाप को कहा भी कि आप अपने बच्चे को समझाते नहीं। तो उस बाप ने दर्द भरे अल्फाज के साथ इस बात को बयान किया कि मेरे में समझाने की ताब नहीं है। वजह यह है कि इस बच्चे की वालदा जो कि दूसरे शहर में है, उनका इंतकाल हो गया है और इस वक्त मैं उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। अब जो ट्रेन के अफराद थे जो अभी तक उस बच्चे की शरारतों से बेजार हो चुके थे और बाप को समझा रहे थे कि इसे समझाओ, अब उन्हें समझ में आ चुकी थी पस मंज़र पता चलने के बाद कि कुछ देर के लिए अगर इस बच्चे की शरारतें बर्दाश्त कर ली जाएँ तो क्या ही हर्ज कि इसके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई, माँ दुनिया से रुख्सत हो गई है। तो ऐसे ही हमारे सामने भी जब मामलात आते हैं तो फौरी रिएक्शन ना दिया करें। बाज़ औक़ात फौरी रिएक्शन के नताइज अच्छे नहीं होते, फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते। तो इस पर आप भी मज़ीद गौर करते रहें, हमारा पैनल भी गौर कर रहा है, लेकिन पैनल से मैं हिकायत पर कोई आर्गुमेंट नहीं करूँगा, कोई राय नहीं लूँगा, बल्कि हम बढ़ेंगे तस्वीर की तरफ और पहली तस्वीर अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। हाँ जी, देखिए तस्वीर।
आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय।
जी इमरान भाई, तस्वीर देख ली
जी। ये एक ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही है जो कि गलत बिछ गई है तस्वीर के अंदर।
ठीक।
तो अब ये आपस में छह लोग हमें नजर आ रहे हैं तस्वीर के अंदर
जी,
जिनमें से दो बड़े लोग हैं, ये दोनों गोया के इनके लीडर हैं।
सही,
यानी दो उसकी टीम में हैं और दो इसकी टीम के अंदर हैं।
तीन तीन अफराद की टीम है।
तीन तीन अफराद की टीम है। एक टीम जो है वो सामने से बिछाती आ रही थी,
सही,
और दूसरी जो है वो इस तरफ से पटरी को बिछाते आ रही थी टीम।
सही।
तो अब इनके अंदर हो गया इख्तिलाफ, क्योंकि काम ही खराब हो गया।
काम खराब हो गया।
अब काम खराब हो गया तो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने गलत किया, वो कह रहा तुमने गलत किया।
ठीक है।
तो मैं ये समझता हूँ कि बगैर प्लानिंग के ये काम किया गया।
ठीक है, यानी आपका जो पॉइंट आ रहा है वो प्लानिंग पे आ रहा है।
जी हाँ।
ठीक है।
कोई भी काम बगैर प्लानिंग के किया जाएगा तो उसका यही हाल होगा कि काम भी खराब होगा, आपस में इख्तिलाफात भी होंगे और फिर दीगर मामलात भी बढ़ेंगे।
ठीक है।
तो बहरहाल जो भी काम करें पहले उसका रोड मैप तैयार करें।
ठीक है।
उसकी प्लानिंग करें कि कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, कितने अफराद की ज़रूरत है, कितनी लागत है, कितने वक्त में होगा, ये सारी चीज़ें पहले तय करने के बाद फिर उस काम का आगाज़ किया जाए तो होपफुली कि वो अच्छे अंदाज में पूरा हो सके।
यानी एग्जीक्यूशन में जल्दी ना की जाए बल्कि पहले गौर व फिक्र कर लिया जाए कि इसके इफ़ एंड बट्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसको हम कैसे टेकल करेंगे। अदनान भाई ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है?
इस तस्वीर में तो यूं लग रहा है कि
जी
कुछ ना कुछ दोनों अफराद की गलती है।
सही है, राय आ गई आपकी।
जी, दोनों अफराद की यूं गलती है कि अगर ये जैसे अभी यहाँ मिलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये मीटिंग पहले कर ली जाती।
सही है,
कि
प्लानिंग हो जाती,
प्लानिंग हो जाती और अपना अपना जो यूं कह लें एक ट्रैक है
जी,
और उसकी जो समत है और जो उसकी जगह है बिछाने की वो पहले से तय कर ली जाती।
ठीक है।
यानी हमारा सफर करने का जो यूं कह लें जो ट्रैक है, जो समत है, वो ये है। तो ये नौबत ना आती जो अब आ चुकी है कि अब मेहनत भी लग चुकी और जो वक्त था वो भी सर्फ हो गया, सरमाया भी सर्फ हो गया और अब भी यहाँ समझदारी का जो तकाजा है वो ये है कि ये दोनों अफराद इसको कम वक्त में, अब गलत हो गया एक, अब इसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं।
सही।
एक तो यह है कि नए सिरे से सारा काम, अब ये यानी जो एक मिल गया है एक ट्रैक
जी,
और दो अलग हो गए
जी।
असल तो एक ने मिलना था, अभी जो एक रहता है एक तो मिला हुआ है पहले से। अब अगर ये समझदारी का काम ये करें कि यहाँ जो सूरत हाल है, अगर साथ जो है वो जगह मौजूद है थोड़ी और ये उसको उस तरफ थोड़ा करके और दोनों को मिला देते हैं,
सही,
तब तो कम वक्त में ये जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा।
ठीक।
लेकिन अगर ये जैसी अभी इनकी सूरत हाल है, बासो तकरार, इनमें से कोई एक भी गलती मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा तुमने किया है, वो कह रहा तुमने किया है, अच्छा वो जो उनके साथ वाले अफराद हैं वो एक दूसरे की ये जो धींगा मुश्ती है ना उसको देख रहे हैं और समझ उन्हें भी नहीं आ रही कि ये बंदगाने खुदा हल पेश नहीं कर रहे और दोनों वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, तुमने खराब किया है, वो कह रहा तुमने खराब किया है। अगर ये इस वक्त भी पहले तो जो गलती नहीं करनी थी वो प्लानिंग ना करके इन्होंने गलती की, और अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि काम गलत हो गया, अब वो उसे कह रहा है तुमने गलत किया, वो उसे कह रहा है कि तुमने गलत किया।
ठीक है।
चाहिए ये
जैसे हमारे यहाँ रोड्स पे हो जाता है, तुम्हारी गलती थी,
तुम्हारी गलती थी, वो गलती जो है ना मैं तस्लीम करूंगा ना आप तस्लीम करेंगे। यानी आम तौर पर जब इस तरह का मामला हो जाए तो हर एक दूसरे को इल्जाम दे रहा होता है, हालांकि ऐसे में इल्जाम देने की बजाय जो काम गलत हो गया है उसको हम जल्द अज जल्द कैसे सही करें, इसलिए कि हमारे उस गलत हो जाने की वजह से लोग मुसीबत का शिकार हो गए हैं, वो परेशानी का शिकार हो गए हैं। पहले तो थे मैं और आप दो अफराद थे और अब इसके अंदर कुछ और अफराद भी शरीक हो चुके हैं जो हमारी गलती की वजह से बेचारे, वो कहते हैं ना नाकर्दा गुनाह का जो है वो खमियाजा भुगतना। तो बाज़ औक़ात इस तरह का मामला भी हो जाता है कि आदमी ने एक काम, एक गलती उसने नहीं की लेकिन आपने इन लोगों को अपनी उस गलती में शामिल यूं कर लिया है कि जनाब हमसे गलत हो गया है लिहाजा हम बेसुकून हैं तो आपको बेसुकून होना पड़ेगा। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि कम वक्त में इस एक ट्रैक को, यानी इसकी थोड़ी सी जो है वो अगर जगह तब्दील कर दी जाए तो ये ट्रैक सीधा हो सकता है।
ठीक है। तो आपका पॉइंट ये आया कि गलती जो होनी थी हो चुकी है, प्लानिंग की कमी थी, लेकिन अब दूसरी गलती के उसी गलती पे अटक के ना रह जाएं बल्कि उसे सुधारने की और दुरुस्त करने की कोशिश करें। वैसे गलती जो है ना, एक ट्रैक जो आ रहा है ना वो आप देखें ब्रिज के अंदर से जो छोटी सी सुरंग टाइप का बना है उधर से आ रहा है, दूसरा ट्रैक इधर से जा रहा है,
हाँ जी
है ना, तो ये दूसरे ट्रैक वालों की गलती लग रही है इस मंजर से, क्योंकि क्योंकि वो जो ट्रैक बिछा हुआ है ना, अगर आप देखें तो उसके पास तो स्पेस है ही नहीं, वो अपनी स्पेस के मुताबिक सही आया है। तो इस ट्रैक की गलती लग रही है। खालिद भाई आप क्या राय देंगे ये बताएं पहले तो, और दूसरी बात वो पहले जवाब दें आप कि इसमें एक लाइन तो मिल गई है,
ठीक है,
दूसरी लाइन नहीं मिली,
सही है,
तो जो लाइन मिल गई है वो तो गोया के दुरुस्त है, तो अगर उसको इधर कर लें या इसको उधर कर दें और इनको मिला दें तो मामला सीधा हो जाएगा,
बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिस तरह से मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वो क्या कहा जाता है, काया ही पलट के रख दी जाएगी इसकी, क्योंकि ट्रैक इस तरह से बिछते नहीं है जिस तरह हमने सीढ़ी को उठाकर ज़मीन पर डाल दिया हो, बल्कि इसके लिए बाकायदा जो प्लानिंग होती है ये ज़मीन के साथ जोड़ कर बनाए जाते हैं,
ठीक है,
तो ये सिर्फ इसको पलटने से काम हल नहीं होगा बल्कि अब इसको उखाड़ कर दोबारा दुरुस्त करना पड़ेगा और इतना एरिया कम से कम होगा कि अच्छा खासा काम उसके लिए हो जाए। लेकिन यहाँ जो पॉइंट मैं देना चाहूँगा वो ये कि चाहे प्लानिंग फेल हुई या कोई भी मामला हुआ, बहरहाल नतीजा हमारे सामने है कि गलती हो गई है। अब इस गलती का कसूरवार ढूंढने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर ये काम है कि इस मरहले को दुरुस्त कर लिया जाए और इसकी उलझन की सुलझन की तरफ जाया जाए,
ठीक,
ये मामला सुलझ कैसे सकेगा अगर उस पर गौर करेंगे तो मेरे ख्याल से इनके लिए भी आसानी होगी और जिन्होंने इस ट्रैक पर चलना है उनके लिए भी आसानी होगी,
ठीक है, जो अदनान भाई ने बात की आप उसी को
जी उसी के साथ
सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल वाजिद भाई आप क्या इरशाद फरमाएंगे, बहुत इत्मीनान से, बहुत बल्कि मुराकबे की हालत में भी आपने इस पे गौर किया है, तो क्या कहेंगे आप इसे?
जी मैं इससे ये समझ रहा हूं कि इसमें एक जो पटरी है वो मिल गई है एक साइड और एक साइड नहीं मिली। तो ज़िंदगी में कुछ मामलात तो ऐसे होते हैं कि जिनमें गलती की गुंजाइश होती है,
ठीक है,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें 100% परफेक्शन चाहिए होती है।
सही।
जैसे अगर एक गिलास पानी है तो उसमें अगर एक कतरा भी नजासत का गिर जाए तो वो सारा पानी जो है
नजिस
हो जाएगा, अगरचे एक कतरा गिरा
नापाक हो जाएगा,
नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनमें एक बॉन्ड की ज़रूरत होती है और उसमें ज़रा सा भी अगर क्रैक आ जाता है तो वो बॉन्ड काबिले एतमाद नहीं रहता।
सही।
जैसे वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक है
जी,
तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा थोड़ा सा बेअदब है तो चल जाएगा, बेअदबी बेअदबी है,
ठीक है,
वालिदैन को हर्ट करना चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो ये बाइस वबाल है। इसी तरीके से मियाँ बीवी के दरमियान जो एतमाद होता है वो एतमाद मुकम्मल होना चाहिए, एक फरीक को दूसरे फरीक के साथ मुकम्मल वफादारी और रिश्ते को निभाने की सोच के साथ चलना होता है। अगर मियाँ बीवी के इस नाजुक रिश्ते में ज़रा सी भी दरार आ जाए तो गुज़रते वक्त के साथ साथ वो खलीज बढ़ती चली जाती है।
ठीक।
इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ कि जब आप एक लकीर खींचते हैं दो मकामात के दरमियान तो उस लकीर का मुकम्मल तौर पर सीधा होना ज़रूरी है।
सही।
अब अगर आप उस लकीर को एक इंच के लिए भी दाएं या बाएं कर देंगे तो अगर वो लकीर सीधी है तो वो उस मकाम पर नहीं पहुंचेगी जहां उसको जाना चाहिए। मैं इसकी एक और मिसाल दूं कि आप यहां से लाहौर एक खत्ते मुस्तकीम लेकर जाना चाहते हैं
जी।
तो आप अगर उस खत्ते मुस्तकीम को, उस स्ट्रेट लाइन को चंद इंच के लिए दाएं या बाएं कर दें
जी,
तो वो लाइन लाहौर नहीं पहुंचेगी बल्कि वो पिशावर पहुंच जाएगी।
सही।
तो ऐसे ही ज़िंदगी में जो हमारे रिश्ते होते हैं बाज़ ऐसे नाजुक होते हैं कि उनमें बाज़ औकात आपको गलती का मार्जन नहीं मिलता, और उसमें बिलखसूस जो मियाँ बीवी का रिश्ता है और उसमें भी बिलखसूस जो किरदार के हवाले से नज़ाकत है उसके हवाले से आदमी को बहुत मोहतात होना चाहिए।
वाह जी वाह।
बाज़ औकात एक मर्द जो है शादी से बाहर किसी रिश्ते को बहुत लाइट ले रहा होता है,
ठीक है,
लेकिन जब उसकी बीवी को उस रिश्ते का पता चलता है तो वो बेवफाई शुमार होती है। और ऐसे ही खातून के लिए अपनी इज्जत और पारसाई की जो हिफाजत है वो बहुत ज़रूरी है,
ठीक,
कि उसके दामन पे ज़रा सा धब्बा अगर लग जाए तो अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम और गफूर है, वो माफ़ कर देता है, लेकिन दुनिया माफ़ नहीं करती।
ठीक।
तो बाज़ जगहों पर हल्की फुल्की गलती जो है उसकी गुंजाइश निकलती है, लेकिन बाज़ जगहों पे हल्की फुल्की गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। तो ज़िंदगी में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए, और बिलखसूस जिन मामलात की तरफ मैंने इशारा किया है तो उन मामलात में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती
है। सुभान अल्लाह, एक तस्वीर है जनाब, और उससे तीन पहलू हमारे सामने आ गए कि नंबर एक, जब भी कोई काम करने जाएं तो प्लानिंग कर लें, और अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लें, सिर्फ अपने आप पे भरोसा नहीं कर लें बल्कि उस फील्ड के जो एक्सपर्ट अफराद हों अगर उनसे मुशावरत कर ली जाए तो उम्मीद है कि बड़े नुकसान से बचेंगे बल्कि अच्छे अंदाज से काम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इंसान है, गलती हो गई है, तो अब गलती की लकीर पीटते ना रहिए, तो अब उसको दुरुस्त कर लीजिए। और तीसरी बात जो आई हमारे सामने वो ये कि ज़िंदगी के बाज़ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे गलतियाँ चल जाती हैं, चलने से मुराद ये है कि बहैसियत इंसान हो जाती है और फिर उस गलती की तलाफ़ी भी हो जाती है, लेकिन बाज़ गलतियाँ ऐसी हैं कि जिनकी तलाफ़ी होना बड़ा मुश्किल होता है, और मुमकिन है कि अगर हम ये गुनाह और नेकी और सवाब के तनाजुर में देखें तो अल्लाह ताला तो तौबा की वजह से, तौबा की बरकत से माफ़ फरमा देगा, लेकिन दुनिया में वो दाग अपने ज़ात पे से, अपने किरदार पे से हटाना ये बड़ा दुश्वार होता है, और फी ज़माना तो इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब हम बढ़ेंगे अगली तस्वीर की तरफ इमरान भाई, और अगली तस्वीर देखते हैं जनाब।
आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय
क्या है अदनान भाई, आप क्या देख रहे हैं और क्या पैगाम देंगे?
महरोज भाई, अगर इस पिक्चर को ऐसे यानी सरसरी तौर पर भी देखा जाए तो जो एक इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आता है इससे, कि दुनिया जो है ना वो मसाइब, आलाम, आजमाइश, नशेब, फराज और तंगदस्ती और आसानी, मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए का नाम है। इस सारी की सारी कंडीशन में हमें सुकून कैसे मुयस्सर आएगा?
ठीक,
ये चीज़ें हम बदल नहीं सकते। यानी कोई आदमी ये समझे कि मैं जो चाहूँगा वो दुनिया में मेरे लिए हो जाए, मैं अपनी मन मानी ज़िंदगी गुजारूँ दुनिया के अंदर, ये नहीं हो सकता। ये जन्नत के अंदर होगा। जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होगी वो आपको मिल जाएगी, आपकी दस्तरस में होगी, आपकी मुट्ठी में होगी, यूँ कह लें। ये जो वक्त और ये कंडीशन, ये सूरत हाल, ये जन्नत के साथ ख़ास है। दुनिया में रहते हुए हम ये सारी की सारी चीज़ें, इस अंदाज की ज़िंदगी जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इस सब के साथ साथ एक चीज़ ऐसी है जो अल्लाह तबारक तआला की याद पर मुश्तमिल है, जो मुझे मेरे खालिक और मालिक का पता देती है। अगर मैं उस चीज़ को ले लूं और दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह तबारक तआला के साथ ताल्लुक कायम कर लूं, यानी इबादत के वक्त में इबादत, ताल्लुक कायम करने का मतलब ये है मैं घर में हूं तो मेरी जो इबादत का अंदाज़ है वो है जो अल्लाह रसूल ने बताया। घर में रहते हुए मसाइल हैं घर के अंदर, मिसाल के तौर पर बच्चों की ज़रूरियात हैं, दीगर चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स बंदे पर जो है ना वो हावी नहीं होती उस वक्त जब के उसका ताल्लुक अल्लाह तबारक तआला के साथ मजबूत होता है। अगर वो ये जो एक ताल्लुक है अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के साथ, अगर ये ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया है या इसने बिल्कुल ही अपने रब को याद करना छोड़ दिया है, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, एक भी इसे ऐसी लगेगी जैसे 100 बन चुकी हैं या 1000 बन चुकी हैं। और हम देखते हैं अपने मुआशरे में बाज़ औकात आदमी किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, किसी एक मसले की वजह से ही वो आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है और ख़ुदकुशी करने तक जो है वो
नौबत
आ जाती है। यानी वो सिर्फ एक मसला, वजह क्या है उसकी, कि वो अपने खालिक व मालिक को भूल गया। अगर उसका ताल्लुक उधर मजबूत होता तो अब वो जो तवक्कुल, भरोसा और अल्लाह तबारक व ताला पर जो एतमाद था, जिसे एतमाद अलल खालिक कहा जाता है, तो वो इस चीज से ये जो आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है मरने की, खुदकुशी करने की, ये नौबत ना आती। इसलिए दुनिया मसाइल का घर है, लेकिन उसका हल अपने रब को याद करना है कि वही बंदे को मसाइल से निकालने वाला है।
सुभान अल्लाह। जी खालिद भाई,
दान भाई की बात से ही एक शेर अर्ज करके फिर आगे बढ़ता हूँ। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بندہ کبھی یہاں, کبھی اس کی منت, کبھی اس کی سماجت اور لوگوں سے بنا کر رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے ناراض رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس نے آنا سیکھا ہی نہیں. انسان کو فطری طور پہ اور طبعی طور پر نیکی پسند ہونا چاہیے. یہ بولنا آسان ہے, ہونا شاید مشکل ہے, بڑی رکاوٹیں ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, پھر ہی جا کے بندہ اس نہج پر آتا ہے. اور اس کے لیے صوفیہ نے تو اپنی زندگیاں لگائی ہیں, مراقبے کیے ہیں, بہت زیادہ کوششیں کی ہیں. اس تصویر کو دیکھ کر اگر میں ایک بات کہنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ زندگی میں بیسیوں چیزیں آپ کے لیے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں, نقصان دہ بھی ہیں. یہاں 99 کے ساتھ جو پرابلم لکھا ہے, میں اسے اگر ریموو کر دوں, صرف 99 تھنگس اس کو رکھا جائے کہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو کھینچ رہی ہیں, آپ کی ضرورت کی بھی ہیں, آپ کی سہولت کی بھی ہیں, آپ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ان پر,
بیزی ہیں آپ ان میں
جی. لیکن ایک وہ بات ہے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے, جس کو فرمایا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس مقصد کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا.
صحیح,
ضرورتاً تو استعمال کی جائیں گی چیزیں, لیکن مقصد کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں انوالومنٹ ہمیں, کس لیے جناب آپ نماز نہیں پڑھتے, ارے بھائی صبح سے اٹھتے ہیں جو چلتے ہیں ضروریات کمانے کے لیے, ایسی انگیجمنٹ رہتی ہے پورے دن, سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. تو مسجد کی طرف قدم بڑھانا تو بہت بڑا کام ہے جناب. جس سے پوچھ لیا جائے تو اس کی مصروفیات, اس کی ضروریات, اور اس کے پاس اپنی اسٹوریز ہیں
جی.
کوئی نہ کوئی ریزنز اپنے بیان کر ہی دے گا وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی چیز بھی, نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد, اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اگر ایسا ہو گیا کہ ان چیزوں نے تمہاری ساری توجہ کو اپنی طرف لے لیا, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں ہمیں جو خواہش کر رہے مل رہی ہے. آپ دیکھیں کہ نئے سے نئے گیجٹس جو ہیں وہ بندے کی ٹیبل پر موجود ہیں,
صحیح,
لیکن عبادت کے لیے ایک جائے نماز بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے, تلاوت کے لیے ایک قرآن کا نسخہ بھی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. طبعی طور پر اگر میلان اس طرف ہوگا نا تو مہروز بھائی آپ کو جھوپڑیوں میں بھی قرآن واضح طور پہ رکھا ہوا نظر آ جائے گا,
ایسے ہی.
لیکن اگر طبعی طور پر میلان نہیں ہے تو بندہ اپنا محل بھی بنا لے گا تو نماز کے لیے کوئی جگہ مختص کرنا اس کے دھیان میں نہیں رہے گی, وہ چوک جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو یہ میلان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تصویر سے جو چیز آپ نے اخذ کی اور ایک نقطہ اٹھایا کہ ہماری طبعی جھکاؤ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہونا چاہیے, اور اس کی جو آپ نے آخری مثال دی, میں اس پہ تھوڑی اور واضح مثال دے دیتا ہوں.
بالکل,
جو شاید ہر گھر میں ہو چکی ہو, ہر خاندان میں ہو چکی ہوگی, وہ یہ کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں کچھ دینے لینے کا رواج ہے, کچھ دولہا والے بھی دیتے ہیں لیکن دلہن والے زیادہ دیتے ہیں. دلہن کی طرف سے جہیز بھی جا رہا ہوتا ہے, اب وہ کتنا جانا چاہیے کتنا نہیں جانا چاہیے, اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں ایک طرف جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے اس کا تجربہ ہوا خالد بھائی, عمران بھائی, کہ بہت سارے کیسز میں, ایک دو کی بات نہیں کر رہا میں, تو کافی ٹائم ہو گیا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ جی بارات والے دن فون آ رہا ہوتا ہے, مہروس کہاں پر ہو؟ جی میں یہاں پر ہوں. یار وہ قرآن پاک چاہیے تھا, کب چاہیے؟ ابھی چاہیے, آج چاہیے. کیوں یار؟ وہ بہن کی بارات ہے نا آج, تو سارا انتظام تو ہو گیا, وہ قرآن پاک لینا بھول گئے. وہ بیٹی کی ہے نا تو قرآن پاک لینا بھول گئے. یہ ایک دو جگہ نہیں خالد بھائی, یہ میں بالکل, اگر میرے سامنے کوئی آ جائے میں اس کو بتا سکتا ہوں اس اس گھر میں ایسا ایسا ہوا ہے, تو قرآن پاک کیسے بھول گئے؟ حالانکہ جب بیٹی کو دینے کی بات آ رہی ہے, بعض گھروں میں یہ بھی اس سے بھی انکار نہیں کہ قرآن پاک ہی سے ابتدا کی جاتی ہے اور کی جانی بھی چاہیے, وہاں وہ کیسے بھولے؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک آنا چاہیے. اگر کچھ دینا ہی ہے تو نئی زندگی کی شروعات ایک کتاب ہدایت سے بڑھ کر کون سا گفٹ ہوگا؟ تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی, دوسری چیزوں پہ ہوتی ہے. حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں, जनाब ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, फुला ले रहे हैं, ढमकाना ले रहे हैं, ले जी बिल्कुल लेना चाहिए, सफर है, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन आप करने क्या जा रहे हैं? हज करने क्या जा रहे हैं? उमरा। तो हज कैसे होता है, उमरा कैसे होता है? हमने तो ये भी देखा कि वहां पहुंचने के बाद लोगों को नहीं पता कैसे होता है, और वहां से होकर आ गए और जब अपने फजाइल बयान कर रहे हैं कि यूं किया हमने, यूं किया, तो उन यूं करने में और यूं करने में पता चला कितने ही दम लाजिम होगा। तो बहरहाल अपने रुझान नेकी की तरफ लेकर आए, बात से बात चलती है तो कुछ मेरा भी दिल करता कुछ बोलूं तो फिर बोल ही लेते हैं, बड़े लोगों के सामने वैसे ही बोलना मुश्किल होता है, और अब जिसकी तरफ बढ़ रहा हूँ वो तो हम सब में बड़ा है।
जी महरोज भाई, तस्वीर से जो चीज़ बिल्कुल वाजे है वो ये है कि अगर आपकी 99 प्रॉब्लम्स हैं तो उनका जो सोल्यूशन है वो नमाज में है।
ठीक
है, यानी अलामती तौर पे सिम्बोलिकली ये कहा जा रहा है कि चाहे जितनी भी तकलीफें, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी मसाइल हों, अल्लाह की तरफ रुजू करें।
ठीक,
तो अगर आपका अल्लाह ताला की तरफ रुजू है और आपकी लॉ उससे लगी है तो फिर ये वक्ती तौर पे तो मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अन करीब इस टनल के आखिर में, तारीक सुरंग के आखिर में आपको रोशनी ज़रूर नज़र आएगी। कुरान करीम की एक आयत जहन में आती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुक्हु मिन हैथु ला यहतसिब।
वाह जी वाह,
यानी जो अल्लाह ताला से डरता है यानी तकवा इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है, और फिर जहाँ तक रिज्क की बात है तो उसको वहाँ से रिज्क देता है कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। तो जब कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, जैसे रुजू करने का हक है, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होता है। दुनिया भर की परेशानियाँ, दुनिया भर के मसाइल उसके सामने आ जाएं, जब उसने इस दुनिया के मालिक की तरफ रुजू कर लिया तो ये परेशानियाँ उसको वक्ती तौर पे तो परेशान करेंगी, लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होगा, और वो सुरखरूई ही हकीकी कामयाबी है।
सुभानअल्लाह।
और इसके बरक्स जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करता, तो कुरान करीम में है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से मुंह फेर ले तो उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है।
अल्लाह।
तो अब यहाँ पे मालूम ये हुआ कि जिसका रुजू अल्लाह की तरफ है, जिसकी लौ अल्लाह से लगी है, तो अगर वो मुश्किल में आ जाए तो अल्लाह ताला वादा फरमा रहा है कि मैं उसके लिए कोई रास्ता निकालूंगा, और बिलखसूस जो रिज़्क़ की परेशानी है तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि मैं उसको वहाँ से दूंगा कि जहाँ से उसका गुमान भी नहीं है। और जो इसके बरक्स अल्लाह ताला की याद से मुंह मोड़ ले तो बेशुमार नेमतों, बेशुमार वसाइल, बेपनाह दौलत के बावजूद उसकी ज़िंदगी एक तंग ज़िंदगी होती है जिसमें परेशानी होती है, और परेशानी का ताल्लुक सिर्फ मुआशी परेशानी से नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग मुआशी तौर पे बहुत खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, लेकिन उनके दिल को, उनकी रूह को वो सुकून मैसर नहीं होता कि जो उस शख्स को मैसर होता है जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखता है। एक हदीस मुबारका इस तस्वीर को देखने के बाद मेरे जहन में आई थी, इब्न माजा की हदीस जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि जिसने अपनी तमाम सोचों को आखरत बना लिया तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाएगा। यानी जिसने दुनिया की तमाम सोचों को साइड पर कर दिया और आखरत को मुकद्दम रखा, इस बात को याद रखा कि मैंने मरने के बाद उठना है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और अपने आमाल का जवाब देना है, और उसने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी, तो हदीस कहती है कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है, और जिसने दुनिया ही को अपनी तमाम तर सोचों का महवर और मरकज़ बना लिया तो अल्लाह ताला इस बात की परवाह नहीं फरमाता कि वो किस वादी में जाकर हलाक हो जाए, यानी उस शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है। तो हमारे लिए जो सीखने की बात है, समझने की बात है, वो ये है महरोज भाई कि बहैसियत मुसलमान हमें अपनी پرائیورٹی لسٹ میں اپنی ترجیح میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور ان کی رضا رکھنی چاہیے, بقیہ ساری چیزیں بعد میں ہونی چاہیے. تو جس شخص کو سوچ کا یہ محور میسر ہے تو وہ شخص دنیا کا خوش نصیب شخص ہے, اور اللہ نے چاہا تو اس کی زندگی بھی بڑی خوشحالی اور اچھے طریقے سے گزرے گی. لیکن جو شخص اس کے برعکس ہے, اس کی سوچوں کا محور و مرکز صرف دنیا ہے, صبح اٹھتا ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, اور رات جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے ذہن اس کے خیال میں دنیا ہی ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ دنیا بڑی تنگ ہو جائے گی اور اس کو اور اس کی روح کو کسی کروٹ چین نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کو مقدم رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقدم رکھیں, اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھیں, اور دین اسلام کی تعلیمات اور شریعت کو مقدم رکھیں. تو اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی.
کیا بات, دو باتیں, ایک اللہ سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں رہے گی. اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے, چھ مہینے کا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب میں باپ کی گود میں ہوں نا تو اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا. تو اللہ رب العزت تو یقیناً سب سے بڑا ہے, قادر مطلق ہے اور حقیقتاً معبود ہے. تو جب کوئی اس کی سایہ رحمت میں آ جائے گا تو پھر اس کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ پھر تو بڑے سے بڑا پہاڑ اور بڑے سے بڑا طوفان اس کے لیے کچھ بھی نہیں. دوسری بات, عبد الواجد بھائی آپ نے جو کہی, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں عمران بھائی, کہ یہ جو ہے نا کہ وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. کتابوں میں سینکڑوں واقعات اس کے لکھے ہوئے مل جائیں گے, آپ کو تجربے مل جائیں گے, مطلب لوگوں کے ساتھ ہوا ہی ہے. میں بھی ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرا تعلق سنار مارکیٹ سے رہا ہے تو کافی عرصے سنار مارکیٹ میں رہا ہوں. تو دو تاجروں کا کوئی لین دین تھا, اچھا دونوں قابل عزت اس اعتبار سے کہ مارکیٹ میں نام, اور ایک کے پاس دوسرے کی کچھ رقم رہ گئی, وہ لینا بھول گیا کہ میں نے تمہارے کو مال دیا تھا, وہ رقم لینی ہے, حساب میں اتنی باقی ہے, یہ بھول گیا. اچھا وہ بھی دنیا دار ٹائپ کا بندہ, اس نے بولا جب یہ مانگ نہیں رہا تو دوں کیوں, دبا لیے پیسے, ادھر سے تقاضا نہیں ہوا, یہ تو بھول گیا کہ مجھے لینے. ہوتا ہے مارکیٹ میں ایسا, بعض اوقات جب بزنس چل رہا ہوتا ہے اور مسلسل ڈیلیں چل رہی ہوتی ہیں تو ایسا ہو جاتا, تو یہ بھول گیا عمران بھائی. اب کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی, وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آیا اور اسے یہ یاد رہا کہ میں نے فلاں کے اتنے اتنے لاکھ روپے دینے. تو خالد بھائی اس بندے نے ایک مبلغ سے رابطہ کیا اور اس کو کسی ذریعے سے رقم پہنچوائی, اتنا بتا دیا کہ بھائی دینے فلاں کو ہے, مثال کے طور پر عدنان بھائی کی یہ رقم ہے اور یہ اس طریقے سے میرے پاس رہ گئی تھی, آپ پہنچا دو.
سبحان اللہ,
میں کون ہوں یہ نہیں پوچھو, لیکن اتنا بتا دیا, اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی ہے تو اب مجھے خیال آیا یہ رقم جس کی ہے اس کو پہنچا دوں, ہاتھ بھی تنگ ہو گیا تب کشادہ ہوا. عبد الواجد بھائی جس بندے کی رقم تھی, جب وہ رقم اس کے پاس پہنچی نا, اس کے آنسو نکل آئے.
اللہ اللہ,
بقرعید کے ایام تھے, وہ خود اچھا بڑا بزنس مین تھا لیکن بزنس میں اونچ نیچ ہو جاتی, اس کے حالات خراب تھے اور اس نے قربانی بھی, ایک تسلسل ہوتا ہے تو بعض اوقات وجوب سے ہٹ کے ایک تسلسل ہے تو کرنی ہوتی ہے, تو اس نے قربانی بھی کر دی تھی. وہ حیران رہ گیا اور وہ پوچھتا رہ گیا کہ بھیجے کس نے, اب بھیجنے والے کا پتہ ہی نہیں کون تھا اس کا کسٹمر ہی. تو آپ دیکھیں کیسے کہاں سے پورا ہوا, آج بھی ہوتا ہے, اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ چاروں کے پاس بھی اس کی مثالیں موجود ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کی شاید دسیوں مثالیں موجود ہوں گی کہ کب کہاں کیسے کھانے کو ملا اور کیا کیا ملا. عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے آخر میں. عمران بھائی اتنی ساری باتیں ہوئی, ماشاءاللہ نماز کی بات ہو رہی ہے,
میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے.
سبحان اللہ,
دیکھیں رب راضی تو سب راضی.
واہ,
ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نماز ہے, کہ نماز میں رب کی رضا ہے اور نماز میں جو ہے رزق کی کشادگی ہے, نماز میں بیماریوں کا علاج ہے, نماز کے اندر تنگ دستی سے نجات ہے, نماز کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ سے نجات ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یقیناً نماز کے بے شمار فضائل ہیں, بے شمار اس کے فوائد ہیں. قرآن کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. تو اب اتنی اہمیت ہے, میرے رب کا ایک مرتبہ کا فرمان ہی
کافی
ہے اور بہت کچھ ہے اور سب کچھ ہے, لیکن 700 دفعہ اگر اور کافی ٹائم اگر نماز کا ذکر قرآن میں ہے تو اٹ مینس کہ یہ کچھ الگ ہے. یعنی نماز جو ہے بہت اہم چیز ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن بات ایک یہ بھی یاد رکھیں, بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, پھر بھی میری پرابلمس حل نہیں ہوتی, میری پھر بھی پریشانیاں نہیں جاتی, میرے تو پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. تو ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میری نماز ہے کیسی. کیا میری نماز ایسی ہے کہ جو مجھے ان تمام چیزوں کی جو ہے نا وہ فضائل دلانے کا سبب بنے, یا پھر ایسا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر اپنے جسم کو تو کھڑا کر لیتا ہوں, میرا دل دماغ کسی اور طرف گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر بندے کے ظاہری باطنی آداب نماز کے پورے نہیں ہیں تو پھر فضیلتیں اور برکتیں کیسے ملیں گی؟
کیا بات ہے, اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. عمران بھائی, اللہ ہماری دوستیوں کو محبتوں کو سلامت رکھے. تصویر سے ریلیٹڈ نماز ہی کی بات ہے, بالکل ظاہر ہے, کوئی بھی دیکھے گا تو پہچان لے گا. اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ نماز بڑی بنیادی عبادت ہے, رکن اسلام ہے. یہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی سمجھتے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, ایک جملے میں اس کا جواب دیجیے, گہرا دوست کون ہوتا ہے؟
گہرا دوست جو دکھ سکھ میں بندے کے کام آئے. ٹھیک
ہے, عدنان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟
ایسے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے دوست, وہ جو مصیبت میں کام آئے.
ٹھیک ہے, خالد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟
جس سے خوشی غم میں شریک کیا جائے.
ٹھیک ہے جی, عبد الواجد.
یعنی جس کے ساتھ آپ بے تکلف ہوں.
ٹھیک, چلیں آپ قریب قریب ہیں ویسے.
جی,
میں نے آج ایک بات پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی. گہرا دوست وہ ہوتا ہے جس کی غلطی بھی غلطی نہ لگے. تو دوستی اگر مضبوط ہو نا تو پھر سامنے والا دکھ بھی دے تو بندہ اس کو فیل نہیں کرتا. یہ میں یہاں پہ یوں عرض کر رہا ہوں کہ بات ہوئی کہ نماز پرابلم سالو کرتی ہے, بالکل سالو کرتی ہے, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نماز کی برکت سے, یا بڑے بڑے مسئلوں کو فیس کرنے کا یارہ مل جاتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی فائدہ نہ ہو, اگر کوئی فائدہ نہ ہو, کوئی دکھ نہ ٹلے, کوئی مصیبت نہ ٹلے اور مشکلات رہیں, تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟
پڑھیں گے,
پھر بھی پڑھیں گے. کیوں؟
بالکل پڑھیں گے,
ہمارے رب کا حکم ہے. اور مسلمان کی شان تو پھر یہی ہے نا کہ وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے. تو اللہ سے جب اتنی محبت ہے پھر اس کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے قبول ہے اور اس کا حکم بھی قبول ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. ڈاکٹر کہہ دیتا واک شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر کہہ دیتا ورزش شروع کر دیتے ہیں, تو اتنے سارے کام تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی اپنے رب کے حکم کے تحت گزارنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب, نیکسٹ پکچر آ گئی, اور بہت غور سے دیکھ لیں, بہت غور سے.
آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے.
چلیں جی عمران بھائی, کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟
یہ تصویر جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی تھی تو یوں لگا کہ جیسے یہ دو پٹیاں جو ہے نا یہ چیئر کی ٹوٹی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن مزید جب اس پر غور کیا
جی
تو پھر یہ دو آنکھیں نظر آئیں. پھر جب آنکھوں پر غور کیا کہ کس کی آنکھیں ہیں تو پھر ہمیں بلی نظر آئی. تو اب بلی کو بندہ جب کبھی دیکھے نا اور فارغ ہو دیگر کاموں سے, مصروفیت کوئی نہ ہو, تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جب دیکھا اور آپ کی آستینوں میں آپ کے پاس بلی ہوا کرتی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلیوں والے. تو آپ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اب ان کا اصل نام کیا ہے اکثریت کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا.
کیا نام؟
ان کا اصل نام جو ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر چیز جیسی دکھائی دیتی ہے نا حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
اور ہر ایک کی حقیقت کو جاننا یہ ہم پر واجب بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے.
اتنا غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارے پروگرام کی مجبوری ہے کہ ہم تصویر پہ اتنا غور کر رہے ہیں. چلیں جی عدنان بھائی.
حقیقت مجھے یعنی ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ واقعی اس کرسی کے یہ جو دو
پنکھ
یہ ٹوٹ چکے ہیں. اب یہ کسی شخص نے عارضی طور پر بلی کا اسٹیکر لگا دیا ہے یہاں پر, ताकि वो जो नक्स था वो नजर ना आए। जैसे अभी बड़े गौर से देखने के बाद शायद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये टूटे हुए या नहीं, लेकिन ये टूटे हुए थे और इनके ऊपर बिल्ली का स्टिकर लगा दिया गया है, वो यूं लग रहा है जैसे डिजाइन हो,
जैसे कपड़े पड़ जाते हैं तो स्टिकर लगा देते, जैसे
कपड़े लगा दिया जाता है जैसे। तो ये यूं कह लें कि एक पंथ दो काज वाला मामला हुआ, वो जो ऐब था वो भी छुप गया और अब जो है ना वो एक यूं लग रहा है जैसे यहाँ पेंटिंग जो है वो डिजाइन बना हुआ है।
लेकिन ऐसी पेंटिंग हम लगाएंगे नहीं क्योंकि शरण इजाजत नहीं है, हुक्म यही है कि जो जानदार है उसकी तस्वीर का प्रिंट आउट स्टिकर और इस तरीके की फ्रेमिंग करके हम नहीं लगा सकते। जी खालिद भाई,
बस औकात बड़े बड़े मुहावरे कहे जाते कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं
जी,
हम खत देख के मजमून बता देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कभी कभार आंखों देखी चीज भी धोखा दे जाती है।
ओहो,
इससे ये सीखने को मिला कि मुझे भी वाकई पहले ये दो डंडियां टूटी हुई लग रही थी, लेकिन बहरहाल गौर से देखा जाए तो चीजें अपनी हकीकत बता रही होती हैं और हर बंदा पहली नजर में चीजों की हकीकत को समझ जाए ये जरूरी भी।
अच्छा ये देखें इस तस्वीर में ना पहले तो बिल्ली नजर ही नहीं आ रही थी
जी,
लेकिन जब इमरान भाई ने बिल्कुल बयान कर दिया ना इसमें बिल्ली है तो वाजे नजर आ रही है। जी अब्दुल वाजिद भाई आप क्या देख रहे हैं तस्वीर में बिल्ली के अलावा?
जी महरोज भाई इसमें ना एक बड़ी यूनिक सी चीज मेरे जहन में आई है। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये कुर्सी जो है वो टूटी हुई है
जी
बीच से, फिर जब इमरान भाई ने तवज्जो दिलाई कि ये सामने एक बिल्ली बैठी है
जी,
और उस बिल्ली के सामने होने की वजह से उसकी पुश्त पर जो कुर्सी का हिस्सा है वो छुप गया, तो अब मुझे ये मंजर भी दिखाई देने लगा। तो अब मेरे सामने दो ऑप्शन हो गए कि मैं अगर इसको बिल्ली को सामने देखूं तो बिल्कुल मुझे वाजे नजर आ रहा है कि नहीं बिल्ली है और पीछे का मंजर
कुर्सी सलामत है,
कुर्सी सलामत है, और अगर मैं बिल्ली से सरफे नजर करके सिर्फ कुर्सी पे गौर करूं तो फिर मुझे ये लगता है कि यार ये ना कुर्सी टूटी हुई है। तो मेरे जहन में यानी जो एक बात आई हुई है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई कुछ जो दिखा रहा होता है ना आप वही देखना शुरू कर देते हैं।
सही,
एक ये चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि बिल्ली भी हो और देखने वाले को बिल्ली ही नजर आई तो उसने सोचा कुर्सी सलामत है, और एक ये है कि जिसको बिल्ली नजर नहीं आई तो वो ये कह रहा है कि नहीं कुर्सी टूटी हुई है, तो ये भी हो सकता है।
ठीक,
तो जिंदगी में बाज मामलात ऐसे
और दोनों
होते
ही बातें
हैं।
तो हो सकती है कुर्सी भी टूटी हुई और बिल्ली भी बैठी हुई।
हाँ ठीक है, यानी ये अब तीसरी बात हो गई ना
जी।
तो मैं यानी जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि जिंदगी में बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जो कोई आफाकी सदाकतें नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि सूरज यहाँ भी सूरज है और यूरोप में चले जाएं वहां भी सूरज है, जापान में चले जाएं तो वहां भी सूरज है।
ठीक है,
तो बाज चीजें आफाकी सदाकत की कबील से नहीं होती, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और वो काबिले कबूल होता है।
सही,
और वो करना चाहिए।
सही,
तो जिंदगी में बाज चीजें ऐसी हैं कि जिनमें आप सामने वाले को मार्जिन देते हैं और देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तभी आपकी जिंदगी की गाड़ी चलती है, चाहे वो आपकी खान की जिंदगी हो, घर के मसाइल हो, आपका कारोबार हो या आपका किसी और के साथ रिलेशन हो, तो हर जगह पे जामिद नहीं हो जाना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ बस वही है, अगर इससे हट गए तो कुछ भी नहीं है,
हक बस इनके साथ ही है।
हाँ, हक सब आपके साथ है, तो ऐसा नहीं है।
आपके अलावा तकरीबन जितने अफराद हम बैठे हैं सभी ऐनक वाले बैठे हैं, और बात ये जहन में आ रही है जो अब्दुल वाजिद भाई कह रहे थे कि इन्होंने जो दिखाया वो नजर आने लगा और फिर अपनी ओपिनियन एक बनी। तो किसी ने कहा है कि आज फिर तुमने किसी और की ऐनक पहनी, आज फिर तुमने किसी और की ऐनक पहनी, आज फिर तुमको मेरे ऐब दिखाई देंगे।
हाय हाय हाय। एक बात मैं भी अर्ज करना चाहूंगा, इमरान भाई, अब्दुल वाजिद भाई, खालिद भाई, अदनान भाई, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि आप लोगों ने कुर्सी पे भी तबसरे करे और बिल्ली पे भी तबसरे करे, लेकिन मैं पीछे जो भी फर्नीचर का आइटम गालिबन रखा हुआ है मैं उस पर कुछ गुजारिश पेश करना चाहूंगा कि वो भी ब्लैक है, डार्क कलर है, डार्क ब्राउन है या ब्लैक है, देखने में ब्लैक लग रहा है, जिसकी वजह से बिल्ली जो है वो विजिबल नहीं रही, इनविजिबल हो गई है। तो बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी में भी बैकग्राउंड खराब होता है, आप खराब नहीं होते, जिसकी वजह से आप इनविजिबल हो रहे होते हैं। तो अपना बैकग्राउंड चेंज करके देखिए, और बैकग्राउंड से मेरी मुराद है कि जिन लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है वो आपका आपा खा गए, समझ रहे हैं, वो आपकी ज़ात को खा गए, वो आपकी पर्सनैलिटी को किल कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करें, दोस्ती चेंज करें, उठने बैठने के अंदाज चेंज करें, हो सकता है आप निखर जाएं और आपकी रोशनी जो है वो दूसरों को भी نظر آئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے میں جو اچھی باتیں کہیں, سنی, سیکھیں, ان پہ عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر بتقاضا بشریت کوئی غلطی ہو گئی, بارگاہ الہی میں بھی توبہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, اور اللہ پاک ہمیں غلطیوں سے بچنے اور بلکہ غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی راہ کیا کہتے ہیں, آپ کی راہ کیا کہتے ہیں, آپ کی